एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी पहली मेजबान।
और मैं हूँ आपका दूसरा मेजबान। आज हम एक ऐसी किताब की गहराइयों में उतर रहे हैं जिसने विचारों के इतिहास को देखने का नजरिया ही बदल दिया।
हाँ, डेम फ्रांसिस येट्स की द आर्ट ऑफ मेमोरी, मतलब स्मृति कला।
बिल्कुल।
और ये सिर्फ याददाश्त तेज करने की पुरानी तरकीबों का कोई कलेक्शन नहीं है, है ना?
नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। ये किताब तो ये दिखाती है कि कैसे याद रखने के जो तरीके थे उन्होंने सदियों तक पश्चिमी दुनिया की सोच को,
हाँ, उनकी संस्कृति
और यहाँ तक कि विज्ञान की नींव को भी कैसे शेप किया, कैसे आकार दिया।
आज के जमाने में ये सोचना भी बड़ा अजीब लगता है, मतलब जब इतनी इन्फॉर्मेशन है हमारे चारों तरफ।
हाँ, मतलब हर तरफ से जानकारी बरस रही है, तो ये समझना कि भाई पहले लोग कैसे ज्ञान को सहेजते थे,
कैसे ऑर्गेनाइज करते थे,
हाँ कैसे व्यवस्थित करते थे, ये अपने आप में एक बड़ा दिलचस्प सफर है।
सही कहा, ये कुछ ऐसा है जैसे हम अपने फोन और कंप्यूटर की मेमोरी की तुलना अपने पुरखों के दिमाग के अंदर की हार्ड ड्राइव से कर रहे हों।
बिल्कुल सही उपमा दिया आपने। और इस सफर में हमारे गाइड हैं डेम फ्रांसिस अमेलिया येट्स।
हाँ, 1999 से 1981 तक एक जानी मानी ब्रिटिश इतिहासकार, और उनका नाता लंदन यूनिवर्सिटी के वॉरबर्ग इंस्टीट्यूट से था, है ना?
हाँ बिल्कुल। वॉरबर्ग इंस्टीट्यूट अपने आप में ऐसी ही थोड़ी गूढ़ चीजों के अध्ययन के लिए जाना जाता है, और येट्स की खासियत यही थी कि वो इतिहास की उन गलियों में गईं जहां आमतौर पर इतिहासकार मतलब थोड़ा जाने से हिचकिचाते हैं।
अच्छा, जैसे कि?
उनका फोकस था इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री पर, खासकर पुनर्जागरण काल के जो थोड़े गूढ़ रहस्यमयी समझे जाने वाले विषय ना, जैसे हर्मेटिकवाद।
हर्मेटिकवाद ये क्या चीज है, थोड़ा बताएंगे?
हाँ, हर्मेटिकवाद एक तरह का प्राचीन दर्शन है, थोड़ी आध्यात्मिक परंपरा भी है। ये मानता है कि कुछ गुप्त ज्ञान होता है, कुछ साधनाएं होती हैं जिनके जरिए इंसान दिव्य शक्तियों से जुड़ सकता है।
ओके।
और इसी तरह नव प्लेटोवाद था जो प्लेटो के विचारों को थोड़े रहस्यवाद के साथ मिलाता था। तो येट्स ने इन चीजों को सिर्फ अंधविश्वास कहकर खारिज नहीं किया, उन्होंने इन्हें उस दौर के गंभीर बौद्धिक प्रयास के रूप में देखा। उन्होंने वो कनेक्शन देखे जिन्हें अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते थे।
अरे वाह, तो एक तरह से वो विचारों की दुनिया की जासूस थीं, छिपी हुई कड़ियों को जोड़ने वाली।
हाँ हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। और यही बात उन्हें स्मृति कला लिखने के लिए एकदम सही बनाती है। उनका पूरा अकादमिक जीवन ही एक तरह से पुनर्जागरण के इन अंदरूनी छिपे हुए दर्शनों को समझने समझाने में बीता।
अच्छा,
जियोर्डानो ब्रूनो जैसे जो गूढ़ विचारक थे उन पर उनका जो पहले का काम था उसने इस किताब के लिए एक बहुत मजबूत जमीन तैयार कर दी थी।
वो मानती थीं कि ये जादुई लगने वाली विचार प्रणालियां भी अपने समय में दुनिया को समझने का एक तरीका थीं, एक गंभीर तरीका।
चलिए तो फिर किताब में गोता लगाते हैं, इसका सार क्या है, मतलब मेन आइडिया क्या है इस किताब का?
देखिए, ये किताब पश्चिमी संस्कृति में लगभग 2000 साल के लंबे दौर में ये जो स्मृति की कला थी, मतलब याद रखने की खास तकनीकें जिन्हें मीनियों में टेक्नीक्स कहते हैं, उसकी कहानी कहती है।
अच्छा, उनका सफर।
हाँ, उनका पूरा सफर, ये कैसे पैदा हुई, कैसे बदली और उनका असर क्या क्या हुआ।
तो इसका जो मुख्य तर्क है वो सिर्फ ये तो नहीं होगा कि लोग चीजें याद रखने के लिए कुछ ट्रिक्स इस्तेमाल करते थे? नहीं नहीं, उससे कहीं ज्यादा गहरा है मामला। येट्स का जो सेंट्रल आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि ये सिर्फ रटने का तरीका नहीं था, ये ज्ञान को और यहाँ तक कि पूरी रियलिटी को, वास्तविकता को समझने और उसे ऑर्गेनाइज करने का, व्यवस्थित करने का एक फंडामेंटल तरीका था।
अरे,
खासकर उस जमाने में जब प्रिंटिंग प्रेस आम नहीं था, किताबें हाथ से लिखी जाती थीं, महंगी थीं। सोचिए ना, जब गूगल नहीं था, विकिपीडिया नहीं था,
हाँ,
तो आपका दिमाग ही आपका सबसे बड़ा डेटाबेस था, और ये कला उस डेटाबेस को बनाने और इस्तेमाल करने का सॉफ्टवेयर थी एक तरह से।
दिमाग का सॉफ्टवेयर, वाह, ये तो बड़ी दिलचस्प तुलना है ना?
हाँ, और ये सॉफ्टवेयर कोई स्टैटिक नहीं था, रुका हुआ नहीं था।
अच्छा,
ये लगातार अपडेट होता रहा। जैसे प्राचीन यूनान और रोम में ये भाषण याद करने का एक प्रैक्टिकल टूल था वक्ताओं के लिए। फिर मध्य युग में आया तो ये ईसाई नैतिकता सिखाने का, याद दिलाने का जरिया बन गया।
अच्छा,
पुनर्जागरण काल में तो ये और भी जटिल हो गया, एक फिलोसॉफिकल, यहां तक कि थोड़ी जादुई सी प्रणाली बन गया, जिसका मकसद सिर्फ याद रखना नहीं था बल्कि शायद ब्रह्मांड के रहस्य खोलना था।
तो ये किताब फिर किन लोगों के लिए है, किसे पढ़नी चाहिए?
देखिए, ये उन सभी के लिए है जिन्हें विचारों के इतिहास में दिलचस्पी है, जो ये समझना चाहते हैं कि हमारा मन कैसे काम करता है, या आज के विज्ञान की जड़ें कहां तक गई हुई हैं, या फिर पश्चिमी संस्कृति की गहराइयों में क्या छिपा है। हाँ, ये थोड़ी अकादमिक तो है, माननी पड़ेगी बात, लेकिन येट्स का लिखने का अंदाज ऐसा है कि ये एक बौद्धिक जासूसी कहानी जैसी लगती है, पढ़ने में मजा आता है।
अच्छा, तो चलें फिर इस जासूसी कहानी के अलग अलग हिस्सों को देखें। शुरुआत कहाँ से होती है?
शुरुआत होती है क्लासिकल दौर से, प्राचीन यूनान और रोम।
हाँ, और उसकी शुरुआत की कहानी भी तो बड़ी नाटकीय है ना, वो साइमोनाइडिस वाली।
हाँ हाँ, बिल्कुल, कहानी मशहूर है। कहते हैं कि साइमोनाइडिस नाम के एक कवि थे, वो एक बड़ी दावत में थे। वो किसी काम से थोड़ी देर के लिए हॉल से बाहर निकले और तभी भयंकर हादसा हुआ। उस हॉल की छत गिर गई।
ओहो।
अंदर जितने मेहमान थे सब मारे गए, और उनके शव इतने मतलब बुरी तरह कुचल गए कि पहचानना मुश्किल नामुमकिन हो गया था।
ये तो बहुत भयानक है।
हाँ, लेकिन तभी साइमोनाइडिस ने अपनी याददाश्त का इस्तेमाल किया। उन्हें याद था कि कौन सा मेहमान दावत में कहाँ बैठा था।
अच्छा।
और उस क्रम के आधार पर उन्होंने हर शव की पहचान करवा दी।
वाह।
इसी घटना से स्मृति कला का वो मूल सिद्धांत निकला, स्थान में क्रम इज इक्वल टू स्मृति में क्रम। मतलब चीजों को अगर आप एक तय जगह और क्रम में रखें तो उन्हें याद रखना आसान हो जाता है।
कमाल है। पर हमें इस कला के बारे में पता कैसे चला? क्या साइमोनाइडिस ने कोई किताब लिखी थी इस पर?
नहीं, उन्होंने तो नहीं, लेकिन बाद में तीन बड़े लैटिन सोर्सेज हैं जिनसे हमें इसका पता चलता है। एक तो महान वक्ता थे सिसरो, उनकी किताब डी ऑरेटो।
हाँ, सुना है नाम।
दूसरे थे क्विंटिलियन, उनकी इंस्टीट्यूटियो ऑरेटोरिया। और तीसरी एक गुमनाम लेखक की किताब है लेकिन बहुत प्रभावशाली रही, एडहेरेनियम।
अच्छा, तो इन किताबों में क्या बताया गया है? ये तकनीक काम कैसे करती थी? इसका तरीका क्या था?
इन सोर्सेस के हिसाब से इस कला के दो मेन पिलर हैं, दो मुख्य स्तंभ। पहला है लोकाय।
लोकाय मतलब?
लोकाय मतलब स्थान। इसमें आप क्या करते हैं कि अपने मन में एक जानी पहचानी जगह की कल्पना करते हैं, जैसे अपना घर या कोई मंदिर या कोई भी बिल्डिंग जिसके कोने कोने से आप वाकिफ हों। फिर आप तय करते हैं कि आप मानसिक रूप से उस जगह में किस रास्ते से किस क्रम में घूमेंगे, एक फिक्स्ड रूट।
जैसे मैं सोचूं कि मैं अपने घर के मेन गेट से अंदर आई, फिर ड्राइंग रूम में गई, फिर किचन में, फिर बेडरूम में, एक तय रास्ता।
बिल्कुल सही। और दूसरा स्तंभ है इमेजिन्स।
इमेजिन्स
मतलब छवियां। याद रखना है उनके लिए आप बहुत ही स्ट्राइकिंग, अनोखी, भावनात्मक रूप से असरदार और एकदम साफ मानसिक छवियां बनाते हैं।
अच्छा।
और एडहेरेनियम तो ये भी कहता है कि ये छवियां साधारण नहीं होनी चाहिए, वो या तो बहुत ज्यादा सुंदर हों या बहुत बदसूरत, अजीब, फनी या चौंकाने वाली हों। इन्हें इमेजिन्स एजेंटेस मतलब सक्रिय छवियां कहा गया।
सक्रिय छवियां।
हाँ, क्योंकि हमारा दिमाग नॉर्मल चीजों को भूल जाता है।
बिल्कुल।
पर जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी होता है ना, वो याद रह जाता है।
तो इसका मतलब हुआ कि अगर मुझे अपने भाषण के मान लीजिए 5 पॉइंट याद रखने, तो मैं अपने घर के दरवाजे पर पहले पॉइंट से जुड़ी कोई एकदम अजीब सी छवि रख दूंगी।
हाँ।
ड्राइंग रूम में दूसरे पॉइंट की कोई बहुत फनी सी छवि, किचन में तीसरे की, और फिर भाषण देते समय मैं मन ही मन अपने घर में उसी रास्ते पर चलूंगी।
बिल्कुल।
और हर जगह रखी वो छवि मुझे मेरा अगला पॉइंट याद दिला देगी।
एकदम सही। इसी को मेमोरी पैलेस या स्मृति महल तकनीक कहते हैं। ये उस जमाने के वक्ताओं के लिए, जैसे सिसरो थे, भाषण याद करने का एक अचूक तरीका था।
ये तो वाकई कमाल का तरीका है, आज भी काम आ सकता है। लेकिन आपने कहा था कि मध्य युग में इसका रूप बदल गया।
हाँ, मध्य युग में बदला, जब ईसाई धर्म का प्रभाव बहुत बढ़ गया, तो अल्बर्टस मैग्नस और थॉमस एक्विनस जैसे जो बड़े स्कॉलर्स थे, विद्वान थे,
जी, हाँ।
उन्होंने इस क्लासिकल आर्ट को लिया और उसे अपने धार्मिक और नैतिक फ्रेमवर्क में फिट कर दिया।
कैसे? मतलब अब वो भाषण याद करने की जगह बाइबल की आयतें याद करने लगे इस तरीके से?
वो भी करते होंगे, लेकिन बात उससे भी आगे बढ़ गई। उन्होंने मेमोरी आर्ट को प्रूडेंस यानी विवेक, जो एक मुख्य सद्गुण माना जाता है, उसका एक जरूरी हिस्सा बना दिया।
विवेक का हिस्सा?
हाँ।
कैसे?
उनका तर्क ये था कि भविष्य के लिए सही और बुद्धिमान फैसले लेने के लिए ये जरूरी है कि हमें अतीत की बातें, खासकर नैतिक सबक, अच्छी तरह याद हों। तो इसलिए अपनी याददाश्त को ट्रेन करना, उसे तेज करना, ये सिर्फ एक कला नहीं रही, ये एक नैतिक जिम्मेदारी बन गई।
अरे, मतलब अच्छी मेमोरी रखना एक तरह से पुण्य का काम हो गया।
हाँ हाँ, कह सकते हैं। और मकसद भी बदल गया। अब जोर दुनिया में सफलता पाने के लिए भाषण याद करने पर उतना नहीं था जितना कि मोक्ष पाने के लिए। धार्मिक सत्य, पापों के क्या बुरे नतीजे होते हैं, पुण्यों का क्या फल मिलता है, इन चीजों को याद रखने पर जोर आ गया।
अच्छा।
तो अब लोकाई वो जो मानसिक स्थान थे वो स्वर्ग नरक या परगेटरी पाप शोधन स्थल जैसी कल्पनाएं बन गई।
बाप रे।
और इमेजिन्स वो जो छवियां थी वो सद्गुणों और अवगुणों की पाप और पुण्य की प्रतीक बन गई। सोचिए आप नरक के किसी कोने की कल्पना कर रहे हैं और वहां किसी खास पाप से जुड़ी कोई भयानक सी छवि रख रहे हैं ताकि वो पाप करने का ख्याल भी आपके मन में ना आए।
उफ, ये तो याददाश्त का इस्तेमाल डर पैदा करने के लिए हो गया।
हाँ, या प्रेरणा देने के लिए भी।
जी।
स्वर्ग की सुंदर छवियां भी बनाई जाती होंगी।
जी।
और इसका गहरा सारा में उस युग की कला और साहित्य में भी साफ दिखता है।
जी।
जैसे दांते की मशहूर किताब है डिवाइन कॉमेडी।
हाँ हाँ, सुना है।
जिसमें वो नरक, परगेटरी और स्वर्ग की यात्रा करते हैं। कई लोग मानते हैं कि वो मध्ययुगीन स्मृति कला का ही एक साहित्यिक रूप है। पूरा स्ट्रक्चर वैसा ही है।
तो यहाँ से कहानी और भी ज्यादा पेचीदा और रोचक होती जाती है पुनर्जागरण काल में, है ना? वहाँ क्या हुआ?
हाँ, पुनर्जागरण काल में ये कला अपने चरम पर पहुंची, पीक पर।
लेकिन एक नए, थोड़े रहस्यमय गूढ़ अंदाज में।
अच्छा।
एक तो छपाई का आविष्कार हो चुका था, तो स्मृति कला पर लिखी किताबें अब ज्यादा लोगों तक पहुँच रही थी।
हाँ, ये तो बड़ा बदलाव रहा होगा।
बिल्कुल। और इसी दौर में एक विचारक आए,
रिमेन लुल।
उनकी एक कला थी आर्स कॉम्बिनेटोरिया।
आर्स कॉम्बिनेटोरिया
मतलब
संयोजन कला। ये सिर्फ याद रखने की प्रणाली नहीं थी, ये अक्षरों, प्रतीकों, विचारों को अलग अलग तरीकों से जोड़कर नया ज्ञान पैदा करने की, जेनरेट करने की प्रणाली थी।
अरे वाह, मेमोरी टूल से बढ़कर एक तरह का आइडिया जनरेटर बन गया।
हाँ, कुछ वैसा ही। और फिर आए ग्यूलियो कैमेलो। उनका आइडिया तो और भी क्रांतिकारी था, मेमोरी थिएटर या स्मृति रंगमंच।
मेमोरी थिएटर।
हाँ, उन्होंने एक ऐसी असली या कम से कम मानसिक इमारत की कल्पना की जो पूरे ब्रह्मांड का एक मॉडल हो। उनका मानना था कि अगर कोई इस थिएटर को पूरी तरह समझ ले, इसमें मानसिक रूप से घूम सके, तो उसे सृष्टि के हर ज्ञान का बोध हो सकता है।
क्या बात है, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान एक थिएटर में।
हाँ, यहाँ आकर स्मृति कला का सीधा रिश्ता दर्शन से, तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स से जुड़ गया।
ये तो बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा लगती है, लेकिन इस कहानी का असली हीरो कहें या विलन कहें, वो तो कोई और है शायद।
आप जियोर्डानो ब्रूनो की बात कर रही हैं ना?
हाँ
हाँ, वो इस कहानी के सबसे सेंट्रल, सबसे विवादास्पद और आखिरकार सबसे दुखद पात्र हैं। ब्रूनो पहले एक डोमिनिकन पादरी थे, लेकिन बाद में वो हर्मेटिक दर्शन से बहुत प्रभावित हुए। याद है हर्मेटिकवाद?
हाँ हाँ, वो गुप्त ज्ञान से दिव्य शक्ति पाने वाला विश्वास।
बिल्कुल। तो ब्रूनो ने क्या किया, उन्होंने क्लासिकल मेमोरी पैलेस तकनीक, लुल की संयोजन कला और हर्मेटिक दर्शन, इन सबको मिला दिया और एक बहुत ही शक्तिशाली चीज बनाई।
शक्तिशाली कैसे?
देखिए, ब्रूनो का लक्ष्य सिर्फ चीजों को याद रखना नहीं था, बिल्कुल नहीं। वो स्मृति कला को एक आंतरिक जादुई उपकरण मानते थे।
जादुई उपकरण मन के अंदर, मतलब?
उनका मानना था कि इंसान का जो मन है, मेंस कहते थे वो लैटिन में, उसमें ईश्वर की एक चिंगारी है, डिवाइन स्पार्क, और ये मन पूरे ब्रह्मांड का, जिसे मैक्रोकॉस्म या वृहद ब्रह्मांड कहते हैं, उसे एक आईना बन सकता है, उसे रिफ्लेक्ट कर सकता है।
अच्छा।
तो ब्रूनो ने स्मृति स्थानों और खासकर छवियों, इमेजिन्स का इस्तेमाल इस तरह से किया कि वो सिर्फ याद रखने के निशान ना रहें, बल्कि वो जादुई तावीजों या ज्योतिष के प्रतीकों की तरह काम करें।
अरे बाप रे।
इन शक्तिशाली छवियों को अपने मन में स्थापित करके वो अपने मन को, अपनी आत्मा को ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों के साथ अलाइन करना चाहते थे, जोड़ना चाहते थे।
ये तो याददाश्त के जरिए खुद को लगभग ईश्वर जैसा बनाने की कोशिश लगती है।
हाँ बिल्कुल, ये पैसिवली जानकारी जमा करना नहीं था, ये एक्टिवली अपनी आत्मा को बदलना था, उसे ब्रह्मांड के आदर्शों के जैसा ढालना था, और इसके जरिए दिव्य ज्ञान, ग्नोसिस और शक्ति पानी थी। ये दुनिया को याद करना नहीं था, ये दुनिया बन जाना था।
ओ।
और यही विचार इतने रेडिकल थे, इतने धर्म के नजरिए से खतरनाक माने गए कि चर्च ने उन्हें विधर्मी करार दिया और 1600 में रोम में उन्हें जिंदा जला दिया गया।
सोचकर ही सिहरन होती है, एक ऐसी कला जो याददाश्त बढ़ाने से शुरू हुई, वो किसी की मौत का कारण बन गई। ब्रूनो के बाद क्या हुआ इस परंपरा का, कुछ बचा?
ब्रूनो के बाद रॉबर्ट फ्लड जैसे कुछ और विचारक हुए जिन्होंने इस परंपरा को और विस्तार दिया। फ्लड ने स्मृति थिएटरों के बहुत ही डिटेल्ड, जटिल चित्र बनाए जो ब्रह्मांड, मैक्रोकॉस्म और मनुष्य, माइक्रोकॉस्म के बीच के गहरे रिश्तों का नक्शा खींचते थे। लेकिन धीरे धीरे इस कला का पतन होने लगा।
पतन क्यों? इतनी शक्तिशाली कला खत्म क्यों होने लगी फिर?
यत्स इसके दो मुख्य कारण बताती हैं। पहला और शायद सबसे बड़ा कारण था प्रिंटिंग प्रेस का आम हो जाना।
अच्छा, किताबें।
हाँ, किताबों ने ज्ञान को सहेजने का एक आसान और स्थायी बाहरी जरिया दे दिया। अब जानकारी को अपने दिमाग के अंदर इतने मुश्किल महलों में सहेज कर रखने की जरूरत कम महसूस होने लगी।
हाँ, ये तो है। जैसे आज हमें फोन नंबर याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, सब फोन में सेव है।
बिल्कुल वही बात। और दूसरा कारण?
दूसरा कारण था वैज्ञानिक क्रांति और नए दर्शन का उदय।
डेकार्टस आए,
फ्रांसिस बेकन आए।
हाँ,
इन विचारकों ने तर्क पर, गणित पर और प्रत्यक्ष अवलोकन यानी एक्सपेरिमेंट पर आधारित ज्ञान पर जोर दिया।
हाँ,
उन्होंने कल्पना पर आधारित ये जो स्मृति कला थी उसे अवैज्ञानिक कहा, अतार्किक कहा, यहाँ तक कि अंधविश्वासी कहकर खारिज कर दिया।
अच्छा,
ज्ञान का आधार अब अंदर की मानसिक छवियां नहीं रहीं, बल्कि बाहरी दुनिया का ऑब्जेक्टिव एनालिसिस बन गया। कला और कल्पना का महत्व ज्ञान के क्षेत्र में कम हो गया।
तो इस पूरी कहानी का, इस 2000 साल के सफर का निचोड़ क्या है? क्या मुख्य बातें हम सीख सकते हैं इससे?
कई बहुत जरूरी बातें हैं। पहली तो है कल्पना की जबरदस्त शक्ति।
हाँ,
आज हम कल्पना को शायद सिर्फ मनोरंजन या कला तक ही देखते हैं, लेकिन येट्स दिखाती हैं कि सदियों तक इसे ज्ञान पाने और उसे सहेजने का एक बहुत गंभीर, बहुत शक्तिशाली औजार माना जाता था। खासकर वो जो भावनात्मक रूप से चार्ज्ड अनोखी छवियां थी ना इमेजेंस एजेंट्स, वो सिर्फ याद रखने की ट्रिक नहीं थी, वो ज्ञान को जिंदा करने का तरीका थी। और पुनर्जागरण में तो ये एक जादुई सिद्धांत ही बन गया था।
सही कहा। और दूसरी बात?
दूसरी बात ये कि स्मृति सिर्फ याद रखने का काम नहीं थी, वो ज्ञान को व्यवस्थित करने का सिद्धांत थी।
अच्छा।
जब तक हमारे पास एनसाइक्लोपीडिया नहीं थे, लाइब्रेरीज आसानी से उपलब्ध नहीं थीं, डिजिटल डेटाबेस तो थे ही नहीं, तब तक ये स्मृति कला ही जानकारी को स्ट्रक्चर देने का, उसे आपस में लिंक करने का और उसे जरूरत पड़ने पर वापस पाने का मुख्य तरीका थी। ये उस समय का गूगल सर्च या पर्सनल विकिपीडिया थी जो आपके दिमाग में ही रहती थी।
यह सोचना भी कमाल है। तीसरी बात क्या है?
तीसरा, हम ये देखते हैं कि कैसे एक ही आइडिया या तकनीक अलग अलग जमानों और संस्कृतियों में जाकर अपना रूप बदल लेती है। स्मृति कला एक प्रैक्टिकल जरूरत, भाषण याद रखना से शुरू हुई, फिर एक नैतिक जरूरत, विवेक का हिस्सा बनी और अंत में ब्रह्मांड के रहस्य खोलने की चाबी, जादुई प्रणाली बन गई। ये दिखाता है कि विचार कैसे समय और माहौल के साथ बदलते हैं, विकसित होते हैं।
और चौथा, मुझे लगता है वो जादू और विज्ञान वाले कनेक्शन से जुड़ा होगा।
हाँ बिल्कुल। चौथी बात यह है कि ये किताब जादू, धर्म और विज्ञान के बीच की जो मोटी दीवारें हम मान लेते हैं उनको चुनौती देते हैं।
सही है।
हम अक्सर इन तीनों को एकदम अलग अलग डिब्बों में देखते हैं, लेकिन येट्स दिखाती हैं कि खासकर पुनर्जागरण में ये कितने ज्यादा आपस में गूंथे हुए थे। ब्रूनो जैसे विचारक अवैज्ञानिक नहीं थे, वो एक अलग तरह की दुनिया को देखते थे जहां ब्रह्मांड एक जिंदा सिंबॉलिक सिस्टम था। और उनकी जो ज्ञान को व्यवस्थित करने की, दुनिया को समझने की महत्वाकांक्षा थी, वो कहीं ना कहीं आधुनिक वैज्ञानिक सोच की तैयारी भी लगती है।
पांचवी बात शायद बाहरी और आंतरिक ज्ञान वाली है।
हाँ, सही पकड़ा। पांचवा मुख्य संदेश है ज्ञान संस्कृति का अंदरूनी से बाहरी हो जाना।
मतलब?
मतलब ये कि छपाई और फिर बाद में डिजिटल तकनीक ने ज्ञान के स्टोरेज को हमारे दिमाग से निकालकर बाहर की डिवाइसेस में डाल दिया है।
हाँ, ये तो है।
और इसका असर हमारे सोचने के तरीके पर, हमारी याददाश्त की क्षमता पर और शायद हमारे जो आंतरिक दुनिया है उस पर भी गहरा पड़ा है। इस पर हम अंत में और बात कर सकते हैं।
और आखिरी मुख्य बात?
छठी और शायद सबसे गहरी बात है मन और ब्रह्मांड के बीच का वो गहरा रिश्ता।
माइक्रोकॉज्म और मैक्रोकॉज्म वाला?
हाँ वही। प्राचीन काल से लेकर पुनर्जागरण तक ये सोच बहुत मजबूत थी कि इंसान जो लघु ब्रह्मांड है माइक्रोकॉज्म, और ये पूरा ब्रह्मांड जो वृहत ब्रह्मांड है माइक्रोकॉज्म, इनके बीच एक गहरा सीधा कनेक्शन है। और स्मृति कला को अक्सर इस कनेक्शन को समझने, महसूस करने और यहाँ तक कि उसे मजबूत करने की एक तकनीक के रूप में देखा जाता था।
ये किताब तो वाकई विचारों का खजाना है। चलिए कुछ सबसे यादगार विचारों को फिर से दोहराते हैं, जैसे इस किताब के कोट करने लायक विचारों।
जरूर। पहला विचार, क्लासिकल स्मृति कला सिर्फ छोटी मोटी लिस्ट याद करने के लिए नहीं थी। इसका असली मकसद था कल्पना और क्रम का इस्तेमाल करके ज्ञान के बड़े बड़े सिस्टम्स को पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स को दिमाग में सहेजना। ये कोई मामूली ट्रिक नहीं, बल्कि एक सीरियस बौद्धिक स्किल थी। बहुत अभ्यास और अनुशासन चाहिए होता था इसके लिए।
दूसरा विचार, मध्ययुग में आकर यही कला नैतिकता और धर्म सिखाने का टूल बन गई। नरक और स्वर्ग जैसी जगहों की कल्पना की जाती थी और वहां पापों के भयानक नतीजों और पुण्यों के सुखद इनामों की छवियां रखी जाती थी, ताकि वो इंसान की आत्मा पर, उसकी रूह पर हमेशा के लिए छप जाएं। याददाश्त एक तरह की मॉरल गाइड बन गई।
तीसरा विचार, जियोर्डानो ब्रूनो के लिए ये कला दुनिया को सिर्फ याद करने के बारे में नहीं थी, ये दुनिया बन जाने के बारे में थी। ये एक एक्टिव जादुई तकनीक थी जिसके जरिए प्रैक्टिस करने वाला अपनी आत्मा पर ब्रह्मांड की शक्तियों और आदर्शों को छापकर खुद डिवाइन बन सकता था, दिव्य बन सकता था। ये याददाश्त से कहीं ज्यादा आत्मा की ट्रांसफॉर्मेशन का रास्ता था।
और चौथा विचार, स्मृति कला एक तरह की अंदरूनी लिखाई थी। जैसे हम बाहर कागज पर लिखते हैं, वैसे ही ये दिमाग के अंदर इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने, उसे ऑर्गेनाइज करने और फिर से रिट्रीव करने का एक सिस्टम थी। खासकर उस जमाने में जब बाहरी लिखाई यानी किताबें उतनी आम नहीं थी।
इसे अगर हम आज के संदर्भ में देखें तो ये सब सुनने में शायद बहुत पुराना, बहुत किताबी लगे, पर क्या इन विचारों का आज की जिंदगी में भी कोई मतलब है? क्या हम इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं?
मुझे तो लगता है बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे सीधा तरीका तो वही है, स्मृति महल या मेथड ऑफ लॉसी तकनीक।
हाँ,
आज भी बहुत से मेमोरी चैंपियंस हैं, स्टूडेंट्स हैं या जिन्हें भाषण देना होता है, प्रेजेंटेशन देनी होती है, वो लिस्ट याद करने, मेन पॉइंट्स याद करने, यहाँ तक कि भाषाएं सीखने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, और ये बाकी काम करती है।
बिल्कुल, और सिर्फ तकनीक ही नहीं बल्कि उसके पीछे का जो सिद्धांत है, विजुअलाइजेशन की शक्ति, वो भी बहुत जरूरी है।
हाँ, दृश्यांकन।
जब हम किसी सूखी, बोरिंग या मुश्किल जानकारी को इंटरेस्टिंग, अजीब, इमोशनल या फनी तस्वीरों में बदलते हैं तो उसे सीखना और याद रखना बहुत आसान हो जाता है। ये क्रिएटिविटी को भी जगाता है। हम सब अनजाने में करते भी हैं ये। जब कोई मुश्किल चीज समझनी हो तो कहते हैं ना, जरा इसकी पिक्चर दिमाग में बनाते हैं।
ये भी सोचने वाली बात है कि हम अपनी भाषा में ज्ञान के लिए कितने सारे स्थानिक रूपक इस्तेमाल करते हैं।
हाँ, जैसे ज्ञान का क्षेत्र, तर्क का ढांचा, किसी विषय की गहराई में जाना,
बातचीत को आगे बढ़ाना। यट्स की किताब पढ़कर लगता है कि ज्ञान को स्पेस और जर्नी के रूप में देखने की ये आदत हमारी सोच में कितनी गहरी बैठी हुई है, शायद उसी स्मृति कला की देन है।
और ये किताब हमें विज्ञान के इतिहास को भी एक अलग नजरिए से देखने में मदद करती है।
कैसे?
हम अक्सर सोचते हैं कि विज्ञान बस तर्क और प्रयोग से पैदा हुआ, लेकिन येट्स दिखाती हैं कि ज्ञान को व्यवस्थित करने की, उसे क्लासिफाई करने की, दुनिया के पैटर्न समझने की जो एक साइंटिफिक इच्छा है, उसकी जड़ें शायद इन पुरानी, यहाँ तक कि जादुई समझे जाने वाली ज्ञान प्रणालियों में भी है।
और क्रिएटिविटी के लिए भी शायद इसमें कुछ है, जैसे ब्रूनो विचारों को जोड़ते थे।
हाँ बिल्कुल, ब्रूनो की जो प्रणाली थी जिसमें वो अलग अलग विचारों, सिम्बल्स को बड़े अनएक्सपेक्टेड तरीकों से जोड़कर नए मतलब निकालते थे, वो आज भी क्रिएटिव थिंकिंग के लिए एक मॉडल बन सकती है। अलग अलग दूर दूर के आइडियाज के बीच नए कनेक्शन बनाना, यही तो है क्रिएटिविटी की चाबी।
तो इस पूरी चर्चा के बाद आपके लिए सबसे बड़ी सीख या सबसे चौंकाने वाली बात क्या रही इस किताब से?
मेरे लिए शायद ये एहसास सबसे गहरा रहा कि छपाई के आने से पहले ज्ञान का अनुभव कितना अलग रहा होगा, कितना ज्यादा अंदरूनी, कितना कल्पना पर आधारित। और ये जानना कि कल्पना को सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं बल्कि ज्ञान और यहाँ तक कि आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत माना जाता था, ये बहुत असरदार है। और हाँ, वो आंतरिक से बाहरी ज्ञान संस्कृति में बदलाव वाली बात भी बहुत सोचने पर मजबूर करती है।
और मेरे लिए शायद दो बातें। पहली, ये देखकर हैरानी होती है कि याददाश्त को कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंस और पावर दी गई थी, सिर्फ जानकारी रखने की नहीं बल्कि नैतिक चरित्र बनाने की, और ब्रूनो के केस में तो दिव्य बनने तक की।
हाँ?
दूसरी, जियोर्डानो ब्रूनो की कहानी। ये सोचना कि विचारों के लिए, याद रखने के खास तरीके के लिए किसी को जान देनी पड़ सकती है, ये आज की दुनिया में इमेजिन करना भी मुश्किल है। ये दिखाता है कि विचार कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। वाकई
इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है जिसे हम अपने श्रोताओं के लिए एक सोचने के बिंदु के तौर पर छोड़ सकते हैं।
हाँ।
आज के डिजिटल युग में जब हमारी मेमोरी का एक बड़ा हिस्सा हमारे दिमाग से बाहर है, हमारे फोन में, कंप्यूटर में, क्लाउड में, तो ये चीज हमारी सोच को, हमारी क्रिएटिविटी को, हमारी अंदरूनी दुनिया को कैसे बदल रही है? उस पुराने आंतरिक स्मृति वाले युग की तुलना में हम क्या खोने हैं और क्या पा रहे हैं।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।